नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड सरकार ने आज सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175,33,00,000 रुपए का बजट पेश किया। बजट में कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष और पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, यह बजट राज्य की प्रगति और विकास की नई राह तय करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता का प्रतीक बताया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 17वें कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन और प्रदर्शनी समारोह का शुभारंभ किया और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में हल्की बारिश से मौसम हुआ सर्द। संध्या समाचार के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175,33,00,000 रुपए का बजट पेश किया। बजट में कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष और पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। आज पंचम विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट राज्य की प्रगति और विकास की नई राह तय करेगा, जिसमें जनता की भलाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में सरकार ने कुल 1,01,034,75,00,000 रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है, जिसमें 62,540,54,00,000 रुपए राजस्व प्राप्तियां और 38,494,21,00,000 रुपए पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। कर राजस्व से 39,917,74,00,000 रुपए और गैर कर राजस्व से 22,622,80,00,000 रुपए मिलने का अनुमान है। वहीं ऋण और अन्य देनदारियों से 38,470,00,000 रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता का प्रतीक बताया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री धामी ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड की थीम पर आधारित है।
ये बजट हमारा नमो अर्थात नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत व ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित है। मुझे प्रसन्नता है कि बजट में राज्य के समावेशी समग्र विकास के लिए ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा बजट में हमने शिक्षा, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया है। यह बजट हमारा सर्वस्तरीय बजट है, इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है। इसका सबसे जो मजबूत पक्ष है कि सभी के लिए सभी संभावनाएं इसमें आगे प्रावधानित की गई हैं। यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के अनुरूप बजट है।
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट का आकार 1,00,000,00,000 रुपए से अधिक है और यह बजट पिछले बजट की तुलना में 13% अधिक है।
ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1,00,000,00,000 को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि बजट में बुनियादी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया है।
देखिए, निराशाजनक और दिशाहीन बजट, और जो पुराने वादे थे पिछले बजट में उसकी रिसाइकलिंग है, जुमलों से भरपूर है और पुरानी बोतल में नया शरबत पेश किया गया है। जो हमारा 16-17 में जो कर्ज था वो 35,000 करोड़ था और डबल इंजन की सरकार जिसका सरकार लगातार उल्लेख करती है, 95,000 करोड़ पार कर गया है। इसमें किसानों की बात नहीं कही गई है, रोजगार की बात नहीं है, युवाओं के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अब बजट प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति और ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा। प्रदेश में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भू कानून में जनभावनाओं के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भू कानून आने से लोगों की समस्याएं दूर होंगी।
भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैसेंड में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं, राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है, उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशेषताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा। राज्य स्थापना के बाद लोगों के मन में जो भी चीजें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित 3 दिवसीय 17वें कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन और प्रदर्शनी समारोह का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। उन्होंने कहा कि देश की पावन भूमि न केवल खाद्यान्न उत्पादन में समृद्ध है बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की जड़ें भी कृषि से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों की मेहनत और धीरज ने हमें खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। जलवायु परिवर्तन पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि सामने प्राकृतिक संसाधनों की घटती उपलब्धता, आधुनिक तकनीकों का समावेश जैसी चुनौतियां हैं, इसलिए आज हमें अधिक उत्पादन के साथ साथ टिकाऊ कृषि को अपनाने की जरूरत है। 3 दिनों तक चलने वाले कृषि महाकुंभ में अलग अलग विषयों पर 10 थीम, 20 सत्र और 15 पैनल डिस्कशन होंगे। जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए पिथौरागढ़ जिले के देवलथल में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के आयोजक कुंडल चौहान ने बताया कि स्कूली बच्चों को जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम के साथ ही जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया।
ये कार्यक्रम अभिलाषा समिति और वन विभाग पिथौरागढ़ की ओर से चलाया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा है। और जो है देवलथल में इसके तहत जो है रैली निकाली गई जिसमें बच्चे शामिल थे, स्कूली बच्चे, इको टास्क फोर्स के लोग शामिल थे, क्षेत्रीय जनता इसमें शामिल थी और एक तरह से ये अनूठी पहल इस बार ये रही है जिसमें इको टास्क फोर्स के लोग भी उसमें इस तरह से शामिल हुए हैं। उसके अलावा वहाँ पर पपेट शो आयोजित किया गया कठपुतली के माध्यम से, बच्चों के बीच में वनों को किस तरह से बचाने की जरूरत है, उनकी क्या महत्ता है, वो हमारे जीवन से किस तरह से जुड़े हैं, इसको लेकर के बड़ा संदेश देने की कोशिश की और जिसमें ये कार्यक्रम सफल भी रहा है।
राज्य के उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया है। राजधानी देहरादून में आज पूरे दिन बादल छाए रहे जबकि सुबह के समय हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के सभी जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर्षिल मुखवा यात्रा 27 फरवरी को प्रस्तावित है। यात्रा से पहले राज्य सरकार की राज्य कार्यकारिणी समिति ने विश्व प्रसिद्ध धाम गंगोत्री और यमुनोत्री में सुरक्षा कार्यों के लिए 27 करोड़ 20 लाख से अधिक की धनराशि जारी कर दी है। इसके अलावा उत्तरकाशी मुख्यालय स्थित वरुणावत पर्वत के निचले हिस्से में भूस्खलन से सुरक्षा के लिए 4,99,92,000 की धनराशि को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने धनराशि को अनुमोदित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175,33,00,000 रुपए का बजट पेश किया। बजट में कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष और पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, यह बजट राज्य की प्रगति और विकास की नई राह तय करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता का प्रतीक बताया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 17वें कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन और प्रदर्शनी समारोह का शुभारंभ किया और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में हल्की बारिश से मौसम हुआ सर्द। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।